सुबह की हल्की धूप हवेली के बड़े डाइनिंग हॉल में फैल रही थी। खिड़कियों से आती सुनहरी किरणें चांदी के बर्तनों पर चमक रही थीं। टेबल पर तरह तरह के राजस्थानी व्यंजन सजे थे। गर्मा गर्म दाल बाटी, घी में डूबी चूरमा, मसालेदार गट्टे की सब्जी और साथ में ताज़ा छाछ। नौकर एक के बाद एक सब कुछ सलीके से परोस रहे थे। रत्ना देवी पहले से अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके पास मौसी सुषमा देवी भी बैठी थीं, जो हर चीज को गौर से देख रही थीं। दूसरी तरफ अक्षरा के माता पिता शांत भाव से बैठे थे। तभी हॉल में भारी कदमों की आहट गूंजी। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठीं। विश्वनाथ ब्लैक कोट पैंट में बिल्कुल रोबदार, चेहरे पर सख्ती और आंखों में वही दबदबा। वो बिना कुछ बोले आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नौकर तुरंत उसकी प्लेट सजाने लगे। कुछ सेकंड तक सिर्फ बर्तनों की आवाज सुनाई देती रही, फिर रत्ना देवी ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, शादी की तारीख निकलवानी है। विश्वनाथ ने बिना ऊपर देखे एक कौर लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। पंडित जी को फोन करना पड़ेगा, रत्ना देवी ने आगे कहा। आर्यन होता तो वो कर देता, लेकिन अब वो नहीं है। उनकी आवाज में हल्की सी कमी महसूस हुई। अक्षरा चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी उंगलियां प्लेट के किनारे पर हल्का सा दबाव बना रही थीं। तुम कर देना ये काम, रत्ना देवी ने साफ कहा। विश्वनाथ ने इस बार हल्का सा सिर उठाया। ठीक है, बस इतना ही कहा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रत्ना देवी ने फिर कहा, और सुनो, इस बार उनकी आवाज में अपनापन था, आर्यन और अदिति को घर ले आओ। एक पल के लिए अक्षरा का दिल जैसे रुक गया। मेरा बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा, रत्ना देवी की आंखों में सच्ची कमी झलक रही थी। अक्षरा के चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन अंदर घबराहट। अगर वो दोनों यहां आ गए, उसने मन ही मन सोचा, तो जो चाल मैं चलने वाली हूं वो सब बर्बाद कर देंगे। उसकी नजरें एक पल के लिए विश्वनाथ पर गईं, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हों। हॉल में हल्की सी खामोशी फैल गई। विश्वनाथ ने अपनी प्लेट में रखा कौर खत्म किया, पानी पिया, फिर बिल्कुल शांत स्वर में कहा, शादी तक उन्हें बुला लूंगा। उसकी आवाज में ना कोई इमोशन था ना कोई जल्दबाजी। आप बस नाश्ता करो माँ, बस इतना ही। लेकिन उस एक लाइन ने पूरा माहौल फिर से बदल दिया। रत्ना देवी ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उन्हें यही सुनना था। मौसी सुषमा देवी ने एक नज़र अक्षरा पर डाली, उनकी आंखों में कुछ शक सा था। उधर अक्षरा ने धीरे से पानी का ग्लास उठाया, लेकिन उसके हाथ में हल्की सी कमकपी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही सधी हुई मुस्कान थी, लेकिन अंदर खेल तेज हो चुका था। विश्वनाथ फिर से चुपचाप नाश्ता करने लगा, जैसे उसने जो कहा वही अंतिम हो। नौकर अब भी खाना परोस रहे थे। घी की खुशबू हवा में थी, लेकिन उस टेबल पर बैठे हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। रत्ना देवी अपने परिवार को फिर से एक साथ देखने की चाह में, विश्वनाथ अपनी जिम्मेदारियों और सच्चाई के बीच संतुलन बनाते हुए, और अक्षरा जो अब और भी सतर्क हो चुकी थी। उसने धीरे से नजर उठाई और सामने बैठे विश्वनाथ को देखा। शादी तक, उसके मन में शब्द गूंजे, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तब तक बहुत कुछ बदल सकता है। जहां बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर हर चाल हर इरादा अपनी जगह ले चुका था। हवेली की ऊपरी बालकनी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नीचे बगीचे में पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई आवाज कर रही थीं। अक्षरा रेलिंग के पास खड़ी थी, उसकी नजर कहीं दूर टिकी थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। उसके पीछे उसके माता पिता खड़े थे। बेटी, उसके पिता की आवाज में चिंता साफ थी, मुझे लगता है यहां रहना बेकार है, विश्वनाथ को छोड़ दे। अक्षरा की आंखें एकदम सख्त हो गईं। उसने बिना मुड़े कहा, प्लीज आप कुछ मत कहिए। फिर धीरे धीरे वो उनकी तरफ मुड़ी, आपकी वजह से ही पहले सब खराब हुआ है। उसके शब्द सीधे थे और चुभने वाले। अगर उस वक्त उसने गहरी सांस ली, विश्वनाथ और मेरी शादी हो गई होती तो आज ये सब नहीं होता। उसके पिता चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे से कहा, बेटा ये सब भगवान का खेल है। अक्षरा ने हल्की सी कड़वी हंसी हंसी, भगवान का खेल या लोगों की गलतियां। माहौल भारी हो गया। उसके पिता ने एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखी, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चले गए। अब बालकनी में सिर्फ अक्षरा और उसकी माँ रह गई। उसकी माँ धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तेरे साथ हूँ, उन्होंने नरमी से कहा। अक्षरा की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर सख्त हो गई। लेकिन आगे क्या, उसकी माँ ने पूछा। रत्ना जी तो विश्वनाथ पर प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन वो साफ मना कर चुका है। अक्षरा ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, बस सामने देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। हर इंसान, उसने धीमे स्वर में कहा, किसी ना किसी मोड़ पर झुकता है। उसकी माँ ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। तू क्या सोच रही है? अक्षरा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। मैं, उसने धीरे धीरे कहा, कुछ ऐसा करने वाली हूँ, उसने एक एक शब्द पर जोर दिया जो बहुत खतरनाक होगा। उसकी माँ का चेहरा हल्का सा डर गया, अक्षरा, और उसके बाद अक्षरा ने उसकी बात काट दी। विश्वनाथ के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हवा अचानक थोड़ी और तेज लगने लगी। उसकी माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटी ऐसा कुछ मत कर देना जिससे बाद में पछताना पड़े। अक्षरा ने हल्का सा सिर तिरछा किया। पछतावा? फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब सब कुछ हाथ से निकल गया। उसकी नजरें फिर से सामने टिक गईं। इस बार उसने मन ही मन कहा, मैं हारने वाली नहीं हूँ। नीचे बगीचे में हवा चल रही थी, ऊपर आसमान शांत था, लेकिन उस बालकनी में एक ऐसी चाल तैयार हो रही थी जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाली थी। जहाँ अक्षरा की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, जीत, किसी भी कीमत पर।